बिहारी जया गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी जया गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय
हरे कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य है कि यहाँ पर हमारे बीच हिज ग्रेस कुंडल कृष्ण प्रभु श्रीमद् भागवत की कथा करने यहाँ पर आए हैं। इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज के सभी भक्तों की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप और आपके साथ जो भी यहाँ पर आए हों, यहाँ पर उन्नति माता जी और उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, जिसमें प्रभु जी कथा व्यास के रूप में आए हैं। कुंडल कृष्ण प्रभु लगभग 1996 से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी तो लगभग वर्ष तक जो इस्कॉन मीरा रोड वहाँ पर फूड फॉर लाइफ की सेवा कर रहे थे, और तत्पश्चात कुंडल कृष्ण प्रभु डायमंड मार्केट में थे, उस समय डायमंड का जो है डायमंड मार्केट उस समय पंचरत्ना बिल्डिंग ओपेरा हाउस में हुआ करता था, और मैं भी 93 में ज्वाइन हुआ था चौपाटी में, तो मीरा रोड के कई जो लोग डायमंड मार्केट में थे चौपाटी में भी आते थे प्रसाद के लिए, जब वो डायमंड में काम करते थे उसमें मूर्तिमान प्रभु, लाल गोविंद प्रभु, कुंडल कृष्ण प्रभु और उनके पिताजी वगैरह आया करते थे। लेकिन उसके बाद जो 99 में उन्होंने राधा गोविंद महाराज से दीक्षा ली, तो उसके पश्चात उन्होंने अपना अधिकांश समय श्रीमद् भागवत के पठन श्रवण और कथा में समर्पित किया। इस्कॉन भावनगर करके WIDC में एक मंदिर है गुजरात के अंदर, वहाँ पर आरंभ के दिनों में प्रचार कार्य स्टार्ट हुआ, और उसके पश्चात कुंडल कृष्ण प्रभु और उनके टीम के प्रयासों से अब एक भव्य इस्कॉन मंदिर वहाँ निर्माण हो गया है। और यहाँ पर पूरे भारत भर में और अलग अलग स्थानों पर और मीडिया पर कुंडल कृष्ण प्रभु श्रीमद् भागवत की कथा करते रहते हैं, और आज गोवर्धन इको विलेज में यहाँ के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। सब लोग आइए जोर से बोलें हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मौदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 11 श्लोक संख्या 15। न यावदेता तनुभ्रु नरेन्द्र विधूय मायां वयुनोदयेन विमुक्त संगो जित षट सपत्नो वेदात्म तत्त्वं भ्रमति हतावत् न यावदेतां तनुभृद् नरेन्द्र विधोय मायां वयुनोदयेन विमुक्तसङ्गो जितषट्सपत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमति हतावत् बोलिए वैष्णवी माताएं धन्यवाद शब्दार्थ न नहीं यावत जब तक एताम यह तनुभृत जिसने भौतिक शरीर अंगीकार किया है नरेंद्र हे राजन विधूय मायाम भौतिक संसार से उत्पन्न कलमश को धोते हुए वयुना उदयेन वैदिक साहित्य तथा सत्संगति से दिव्य ज्ञान जगने के कारण विमुक्त संग समस्त भौतिक संगति से मुक्त जित सत् सपत्ना छह शत्रुओं पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा मन को जीतकर वेद जानता है आत्मतत्वम, आत्मतत्व को भ्रमति घूमता है यह इस भौतिक संसार में, तावत तब तक। अनुवाद एवं तात्पर्य इस दिवा इंग्रेस कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, हे राजा रहुगण, जब तक बद्धात्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है और भौतिक सुख के कलमश से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक अपने छह शत्रुओं को जीतकर आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करके आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे इस जगत में विभिन्न स्थानों में तथा विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। तात्पर्य, जब किसी मनुष्य का मन देहात्म बुद्धि में लिप्त रहता है तो वह अपने आप को किसी एक राष्ट्र, परिवार, देश, जाति से संबंधित मानता है। इन्हें उपाधियां कहते हैं और मनुष्य को इनसे मुक्त होना चाहिए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। जब तक मनुष्य इनसे मुक्त नहीं होता, तब तक उसे इस भौतिक अस्तित्व में बद्ध जीवन व्यतीत करते रहना पड़ता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य इन भ्रांतियों को दूर करना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मनुष्य का जन्म मरण का चक्र चलता रहता है और उसे सभी भौतिक स्थितियों को भोगना पड़ता है। हरे कृष्ण। तो आप सभी वैष्णव वैष्णवी चरणों में भगवत भाव से पुनः सादर वंदन। श्रीमद् भागवत का ये पंचम स्कंद भागवत के 10 विषय स्थान के अंतर्गत आता है, जिसमें भगवान शुकदेव पांडव वंशज प्रेमी परीक्षित को इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोक स्थान का विशेष वर्णन करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग जो श्री जड़ भरत जी रहुगुण को उपदेश दे रहे हैं, इस जड़ भरत रहुगुण संवाद को श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने अमृत महोत्सव कहा है। पहले जब हम शुरुआत में भागवत का थोड़ा बहुत चिंतन करते थे तो अमृत महोत्सव केवल 8वें स्कंद में अमृत मंथन को ही जानते मानते थे। आज भी कई ऐसा ही जानते मानते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रमाणित आचार्य भावार्थ दीपिका के लेखक इस जड़ भरत के उपदेश को अमृत महोत्सव कहे हैं, जो वास्तव में आत्मा के लिए अमृतवत आनंद एवं उद्धार करने वाला है। और इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा तो भागवत के रचयिता वेदव्यास या इसके वक्ता श्री शुकदेव रहुगण के प्रवचन को इस शुरुआत में करते हैं ब्राह्मण उवाच। जड़ भरत जी को क्या बोला? ब्राह्मण। श्री जड़ भरत उवाच बोल सकते थे, लेकिन ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण न तु केवलम वंशे जन्मेना गुणातपि। ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण वंश में जन्म लिए थे जड़ भरत जी। आप जानते हैं जड़ भरत जी के विषय में कि वो पूर्व जन्म में भाव की स्थिति तक पहुंच चुके थे और अब प्रेम तक पहुंचे हुए हैं। जब वाया हिरण हुआ अब जड़ भरत हुए हैं भरत महाराज। ये हिरण तो परेशान करता ही था सतयुग में भी और त्रेता युग में सीता को भी और कलयुग में सलमान खान को भी, सबको। हिरण तो हिरण है और हमारा भी हरण ही हो रहा है। आत्मचेतना का तो माया हरण ही कर रही है, तो ये हिरण से थोड़ा सावधान होना है। हिरण मतलब आसक्ति, यही समझिए आप, अटैचमेंट। और इनको तो एक हिरण था, गृहस्थों को तो हिरण की लाइन है, हिरण ही हिरण है सब। तो हिरण ही हमारा हरण कर रहा है चेतना का, इसलिए प्रसंग बड़ा उपादेय है साधकों के लिए, जिसमें जड़ भरत पूर्ण आत्मस्वरूप में स्थित है। जैसे गीता का एक श्लोक है, जड़ भरत जी के चरित्र को आप उससे क्या कह रहे प्रमाणित या उपमा दे सकते, यस्य आत्ममति रेव, जिसकी मति पूर्ण आत्मा में लगी है, आत्मतृप्तस्य मानव, जो आत्मा में ही तृप्त है भगवान के तस्य, उसको तो कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं। जड़ भरत जैसे ज्ञानी, भगवान ने कहा ना ज्ञानी आत्म एवं मे मत, ज्ञानी चारों में से ज्ञानी मुझे प्रिय है और ज्ञानी मेरा आत्मा ही है। बहुत कुछ ज्ञानियों के विषय में भगवान ने बहुत बोला है, प्रशंसा की है, और इसमें भी वयुना दयेन, संस्कृत में वयुन शब्द का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान, उदयेन ज्ञान को जागृत करके, विधु ये माया, माया को धो डालो, जैसे कोई बैट्समैन धो डालता है ना 6-4, ऐसे ही ज्ञान के बैट से माया को धो डालो, ऐसे भी ऐसे गीता की भाषा में कहे तो ज्ञानाग्ध कर्म दग्ध कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान की अग्नि अंतर में ऐसी जलाओ कि भौतिक कलमश कर्म वासना जल के भस्म हो जाए। ये कुछ बेसिक बातें मैं बता रहा हूं। तो जड़ भरत जी अब केवल ज्ञानी नहीं रहे, पूर्ण भगवत चिंतन में सततम स्मर्तव्यो विष्णु की स्थिति को प्राप्त पुरुष है। इसीलिए ब्राह्मण उवाच कहना जड़ भरत जी के लिए, मानो हम सब ब्राह्मणों के लिए उपादे के आपके लिए स्पेशल बोल रहे, रहुगण तो है ही है, लेकिन जो ब्राह्मण है या ब्राह्मण बनना चाहते हैं या ब्रह्म को पाना चाहते हैं, विशेषकर ब्रह्मचारियों के लिए जड़ भरत जी का ये उपदेश अमृतवत है। जो ब्रह्मे चरति इत ब्रह्मचारी, और ब्रह्म माने वेद, जैसे शंकराचार्य का वो षट शतक बड़ा सुंदर है, उसमें एक श्लोक है ना, वेदांत वाक्येषु सदा रमंत, जो हमेशा वेद के वाक्यों में ही रमण करता है। अच्छा वेद क्या है? वेदो भाई साक्षात विष्णु, वेद भगवान के श्वास है, वेद भगवान स्वयं है, वेदांत कृत वेद विदेह चाहम की घोषणा की है गोविंद गीता में, नोट कर सकते हैं भागवत 6:16-51, चित्रकेतु को स्वयं संकर्षण कहते हैं, अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावन शब्द ब्रह्म परब्रह्म उभो में शाश्वती तनु। भगवान संकर्षण कहते हैं कि अहम वै सर्वभूतानि, मैं सब जीवों के अंदर हूं और धारण भी सबको मैं ही किया हूं, भूतात्मा भूत भाव सबका पालन पोषण भी मैं ही करता हूं, लेकिन हे चित्रकेतु इस मेरे शाश्वत सच्चिदानंद ब्रह्म परमेत्मी भगवान इति ये जो तीन तत्व है, उसके अलावा भी शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म उभो उभो माने दोनों मैं शाश्वती तनु, ये मेरे सनातन स्विग्रह है। तो अब शब्द पर ब्रह्म तो नित्य भगवत धाम में जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में लीला करते हैं, पर ब्रह्म अर्जुन जैसे जान गए गीता में कि आप पर ब्रह्म हो। और इस संसार में यह भी एक समस्या है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी ब्रह्म के विषय में भ्रम में है, है ना? और जो भ्रम में है वो भूल है, भूल है इसलिए जीवन में शूल है, और ये नहीं जानता वो अंग्रेजी में फूल है, इस फूल यस्य शास्त्र यस्य शास्त्र शिक्षु नहीं है तो अंध है, वो अंधा भी है, बहुत कुछ लिख दिया इन लोगों के लिए, गधा भी कह दिया इसको वेदों ने, सयव गोखर जैसे भागवत में है ऐसे ही नीतिकारों ने भी लिखा है। एनीवे, लेकिन वेदांत वाक्येषु सदा रमंत, तो उस पर मैं थोड़ा चिंतन दे रहा हूं हम साधकों के लिए कि शब्द ब्रह्म श्रीमद् भागवतम क्या है। ये भगवान का शब्द ब्रह्म होता है, तेने ये वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, बहुत जगह लिखा है, सनत सनकादिक मुनि कहते हैं पद्म पुराण भागवत महात्म्य में, श्रीमद् भागवत आख्यो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, ये साक्षात कृष्ण है। अब भागवत का एक श्लोक हमारे इस्कॉन में बड़ा प्रसिद्ध है, पुराण अर्क अधुना उदित, यही पुराण भागवत अर्क सूर्य के समान हमारे सामने आया है। धर्म स्थापन करने आए कृष्ण जब स्वधाम गए, तो धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए क्या छोड़ के गए, किस रूप में रह गए, भागवत के रूप में। ओके, लेकिन इसको थोड़ा सा हम डीप अंदर जाए कि एक सूर्य तो है, उजाला कर ही रहा है, लेकिन अंदर अंधेरा है। हमारे अंतकरण में, चित्त में जो अज्ञान है, ये सूर्य की क्षमता नहीं है शायद कि अंदर पहुंच पाए, इसलिए भागवत ज्ञान सूर्य है। अब इसको एक उपमा दी और कि ये ज्ञान का प्रकाश करता है, वेदों के ज्ञान का प्रकाश करता है, हमारे स्वरूप के विषय में, परमात्मा तत्व के विषय में निरूपण करता है। अब बेस से बताऊं एकदम, तो ये शब्द ब्रह्म, देखिए शब्द का बहुत शक्ति है, शब्द का शक्ति है ना, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जाए तो चेहरा खिल जाता है या फिर भयानक भी हो सकता है। शब्द का कितना पावर है ना, आप समझ सकते हो। हम लोग व्याकरण थोड़ा पढ़ते थे तो उसमें आता है शब्द के विषय, शब्द शक्ति के विषय में तीन फेज है शब्द शक्ति के, लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे लक्षणा शब्द शक्ति उसे कहते हैं कि जो शब्द या वाक्य बोला गया उसका शब्दार्थ मीनिंग और इसका परपट भावार्थ सेम होता है। स जल पीवती, वो पानी पी रहा है, तो प्यासा है भाई, पानी पी रहा है ना, शरबत पी रहा है, पी रहा है, कोई ज्यादा उसमें तो किंतु परंतु की बात है नहीं। तो इसको अभिधा कहते हैं कि आसानी से इजीली सबके समझ में, क्योंकि बात यह कि अर्थ भी वही है प्राय। लेकिन एक होता है लक्षणा शब्द शक्ति, जिसका अर्थ होता है कि वाक्य बोला तो गया लेकिन उस कर्ता के विषय में जो वैशिष्ट कुछ उपमा दी गई उसका भाव कुछ अलग है। जैसे रामू शेर अस्ति, रामू शेर है। अब ये तो आप लोग समझ रहे हो कि रामू शेर है, इसका अर्थ क्या है, रामू व्यक्ति मनुष्य ही है लेकिन शेर जैसा है, तो शेर जैसा है मतलब शेर जैसा आकृति नहीं, शेर जैसा शक्ति है, शेर जैसा हाव भाव है। अब इसका सीधा अर्थ करें कि रामू चार पैर वाला शेर हो गया क्या, नहीं, वो शब्दार्थ नहीं लेना पड़ेगा, भाव पकड़ना पड़ेगा उसका कि रामू, लेकिन रामू शेर जैसा ऐसा नहीं बोला, रामू शेर है बोल दिया, रामू शेर जैसा बोल दिया तो लक्षणा मतलब अभिधा में हो जाता वाक्य, लेकिन लक्षणा में डालना है मतलब सेकेंड फेज में कि बात कुछ है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, ऐसी वाली, तो फिर उसका थोड़ा ऐसे वाक्यावली यूज होती है। लेकिन इन दोनों से कभी कभी किसी समर्थ पुरुष का या शुद्ध पुरुष का वाक्य व्यंजना शक्ति से इतना भरपूर होता है कि सीधा आर पार जाता है। एक बात है कि शब्द चेतना के जिस धरातल से निकलता है श्रोता को उसी धरातल की यात्रा करा देता है, इसीलिए कहा गया भागवत पढ़ गया वैष्णव स्थान। दुनिया में कथाकारों की कमी है कि आज तो बंदा और फैशन ही है, लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के हैं, गौड़ीय है, तो हमारे गुरुदेव राधा गोविंद महाराज कहते थे कि हम लोग भागवत कथाकार नहीं है, हम भागवत किंकर है। अई नंद तनुंज, ये जो कटकार शब्द है ना, आज कार का बड़ा समस्या है, आज के कथाकार भी कार के चक्कर में ही है और कथा का कोई आकार नहीं होता उनके पास, देखा जाता है दुनिया में। और ये कार जिस जिसके पीछे लगा ना बहुत खतरनाक है, चाहे कलाकार, ये कार बड़ा खतरनाक वाला है, अंग्रेजी वाला ही नहीं हिंदी में भी, तो कथा में भी कार लगा दिया है। हमारा भी ये माता जी पोस्टर बनाए तो उसमें देखा कथाकार लिखा था मैंने, हाँ चलो ऐसे ही कलियों के लोग तो ऐसे ही हम ठीक ही लिख दिया, लेकिन हम लोग है नहीं, हम कथा के किंकर, क्योंकि भागवत कृष्ण का स्वरूप है तो हम उनके क्या है किंकर। तो जब हम कथा कहते हैं तो हम भागवत ग्रंथ की और भागवत भक्त की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद से हम भक्ति वर्धन करना चाहते हैं भगवत प्रेम। ये भागवत का मूल उद्देश्य तो निणाम भक्ति भविष्यति, स्वयं की और सबकी भगवत प्रीति बढ़े, यही भागवत कथाकार कथा वक्ता या श्रोता या भागवत का उद्देश्य है जो निर्धारित किया गया है भागवत के अनुसार। लेकिन इससे जो हट जाते हैं वो कार के चक्कर में भले पड़ जाए, लेकिन हम सावधान रहे कि हम सेवक हैं, हम सेवा करते हैं, और इसलिए समझना होगा इन बातों को। व्यंजना शक्ति पर मैं बोल रहा हूं, शब्द पहले तो मैं कोट दिया आपको कि भगवान का ही स्वरूप है ये भागवत, तो पूर्ण ज्ञान और शक्ति से युक्त है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कर्णामृत में लिखा है लीला शोक ने कि सवांगमय में जीवनम। कृष्ण का जो ये शब्दावली है ना, चाहे गीता का ज्ञान हो या उद्धव को या अर्जुन, किसी भक्त को गोपियों से जो भी बोला है वो मेरा जीवन है, ऐसा बिलोमंगल लिखते हैं। बहुत सुंदर श्लोक में वो वर्णन करते हैं और इसकी व्याख्या में भी आचार्य लोग बड़ा सुंदर समझाते हैं कि अधिष्ठान का अधिष्ठित में अभेद होता है। जैसे लोहा है उसको अग्नि में रख दो, अब 10-20 मिनट आधा घंटा रहा ना, लोहा समझने की गलती मत करना उसको, वो क्या बन चुका है, वो अग्नि ही बन चुका है। जैसे रिक्शा एक अधिष्ठान है, एक वाहन है, उस पर चलाने वाला एक अधिष्ठ उसमें बैठा हुआ व्यक्ति है, लेकिन हम लोग कहते हैं रिक्शा वाला ये रिक्शा, वो भी समझता है, वो अपने आप को रिक्शा ही समझ रहा है, वो खड़ा कर ही देगा आपके सामने। हम उसमें लोक व्यवहार में भी भेद नहीं कर रहे, जबकि रिक्शा वाला और रिक्शा अलग है, लेकिन व्यवहार में वो भी समझता है, हम लोग करते भी ऐसा है। और जब वो व्यवहार की दृष्टि से चाहे अग्नि लोहे की दृष्टि वो एक हो जाता है, तो कृष्ण और कृष्ण मुख से निकले वाक्य चाहे गीता या हरिनाम अभिन्नत्वात्, तो भगवान की तरह ज्ञान से भरे हुए और बल से भरे हुए है भगवत वाक्य, चाहे गीता के श्लोक या भागवत के। लेकिन सेकेंड पॉइंट, जब इसको शुकदेव जैसे या श्रील रूप गोस्वामी या प्रभुपाद जैसे आचार्य बोलते हैं, वही वाक्य एक तो ज्ञान से और शक्ति से भरपूर था, आप समझ रहे श्लोक, लेकिन अब इसको बोलने वाला व्याख्या करने वाला कोई भगवान का प्रेमी भक्त परंपरा से कोई सुखदेव प्रभुपाद जैसे आचार्य है, तब वो केवल ज्ञान और शक्ति से युक्त नहीं रहते, वो प्रेम और भक्ति से भर जाते। पहले तो भगवान तो ज्ञानमय है, सच्चिदानंद विग्रह पूर्ण शक्तिमान, कृष्ण पूर्ण राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण, लेकिन प्रेम भक्ति भगवान के पास नहीं है, वो किसके पास है, वो भक्तों के पास है। जब वही गीता के वाक्य जब कोई साधु उच्चारण, वो साधु शुद्ध हृदयम, तब वो जो वाक्य बोलता है उसको सुनने वाले को शुद्ध करके वही पहुंचा देता है। इसलिए शुद्ध भक्तों से भागवत सुनना ये पहला धर्म, बोलना बाद में। हमारे कविराज जी को सब लोग कह रहे थे कि आप लिखो चैतन्य चरितामृत, आपके ऊपर नित्यानंद प्रभु का कृपा है, मदन मोहन ने हार दे दिया, फिर भी ये दैन्य में कह रहे थे कि नहीं नहीं आमी नीच आमी अयोग्य, मैं कैसे लिखूं, और हमारे यहां सब मना करते, फिर भी मैं बोलूंगा। बहुत लोग कहते आप सुनिए प्रभु जी, नहीं नहीं मैं प्रीचिंग बस। देखिए हमारी स्थिति, जो बिना श्रोता बने वो वक्ता नहीं बकता है, फिर क्या है वो फिर बकता है। क्योंकि आचार्यों से वो ग्रहण नहीं किया, पाचन नहीं हुआ उसका, जो शरीर जो खाना अंदर जाता है ना एसिडिटी, पाचन नहीं होता ना, वो वोमिट क्या आ जाता है, तो आजकल बकता ये वोमिट होता है। जो पचाया है ज्ञान, जो उतारा है जीवन में, जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर रहा है, ऐसे भक्तों के मुख से निकले वाक्य व्यंजना शक्ति से युक्त होते हैं, जिसका बड़ा असर होता है। मैं आपको एक दो दृष्टांत दूं इसके विषय में। अब ये वाड़ा मतलब वृंदावन, और वृंदावन में आपने वो लाला बाबू वो टेढ़े खंभे मंदिर देखा होगा, कलकत्ता के शाही परिवार के बड़े जमींदार आदमी थे वो, लाला बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे वो, और उसके जीवन चरित्र में आता है कि वे जब कलकत्ता में भी गंगा बहती है और कई अपने खवासों के साथ, खवास मतलब नौकर चाकर के साथ, राजसी विलास ठाट बाट से कहीं भी जाते थे, मतलब तीन चार लोग पान लेके चलते उसके लिए, तीन चार लोग चप्पल लेके, तीन चार लोग छत्र लेके, दो चार चामर लेके, दो पांच आगे दो पांच पीछे, और कलकत्ता में जब लाला बाबू निकलते थे कहीं भी गंगा के कहीं भी, तो लोग देखने लायक होता था उनका ठाट बाट। भगवान ने दिया था ऐश्वर्य, देते हैं कभी कभी कृष्ण किसी को। अब वो एक दिन गंगा जी के तट पर अपने नौकर चाकरों के साथ टहलने लग गए, टहलने गए लाला बाबू, और सूर्य बेला हो गया, मतलब सूर्य अंतिम उदय अस्त होने की तैयारी में, संध्या हो रही थी। उसी समय वहां गंगा तट पर एक नौका चलाने वाला धीमर, जो नौका का धंधा करता आर पार ले जाता था, उसकी कुटिया थी, ये टहल रहे थे वहीं पर, और वो रात भर चलाया था कुछ नौका, तो थक गया था, तो दिन में दो तीन बजे सो गया। अब संध्या हो गई तो उसकी बेटी थी एक छोटी सी, उसने कहा, पिताजी सूर्य अस्त हो रहा है, मतलब संध्या हो रही है, जाग जाइए, संध्या समय सोना नहीं। भारतवर्ष के गांव के छोटे बच्चे भी ये जानते थे, आज बड़े बड़े अपने आप को बुद्धिमान कहने वाले ये बात नहीं समझ रहे। हमने ये देखा है भारतवर्ष की भूमि की ये तासीर है, गांव के छोटे लोगों में भी वेद नहीं जानते वो लोग, लेकिन वेद सार उनके मुख से निकल जाता है कभी कभी, और क्योंकि वो कुल ऊंचा है, वो खून ऊंचा है, ये जगह ऊंची है, ये संस्कार उसको हायर मिले हैं, उसको नहीं पता शायद श्लोकों में लिखा है संध्या काले संप्रवृत्ते चतुष्कर्माणी पद्म पुराण में, उसको भले न पता हो लेकिन लौकिक बेसिक पता है कि नहीं सोना है संध्या समय, संध्या आरती का टाइम हो रहा है। यहाँ भक्तों को कहना पड़ता आरती में आइए, कृपा करिए अपने ऊपर और भगवान के ऊपर थोड़ी बोलना पड़ता है ना हम लोगों को, क्योंकि हम लोग पंडित हो चुके हैं, कहीं पंडित बनने के चक्कर में प्रेमी होना चूक तो नहीं गए ना, अपने आप से पूछिएगा जरूर कि हम सेवक है, हम प्रेमी बनने आए हैं, लेकिन पंडित आए हमें कहीं और न ले जाए तने जने पंडित्य कृष्ण ना ही पाए, भक्तिवश है प्रभु चारी वेद गाए, है ना। अब एक वाक्य, सूर्य अस्त हो चुका है, जाग जाइए, लाला बाबू के कान में गया ये वाक्य, और उसी वाक्य का उसने अर्थ किया कि जीवन का सूर्य और मैं क्या ये भोग विलास में पड़ा हूं, और वहीं से घर नहीं गए, सेवकों को कहा कि सारी संपत्ति चेक करो और लिस्ट दो मुझे, और वहीं से सीधा वृंदावन ट्रेन पकड़े। अब यहां कितना गीता के श्लोक झाड़ दिए, मन ही नहीं हो रहा है, अब काउंसिलरों की दशा देखो, दुर्दशा। हम लोग सोच रहे कि सारा ज्ञान दूसरों को बांटने के लिए हमने उतार लिया है, जीवन में उतारने नहीं लिया है, कई एकाध श्लोक जीवन में तो आ जाए, इतने श्लोक मुख में और जीवन पूरा शोक में, ये कैसा नजारा है भाई, थोड़ा सोचना पड़ेगा ना अपने आप का दर्शन ही, भागवत दर्शन तो है। तो व्यंजना शक्ति इसे कहते हैं कि कोई एक वाक्य बोला गया साधारण सा, लेकिन अपने अपने लोग अपने अपने तरीके से लेते हैं, जैसे 8 बज गया, अब हम इस्कॉन वाले क्लास का टाइम हो गया, अब पुजारी अंदर होगा, भोग बाल भोग का समय हो गया, कोई गृहिणी घर में जागेगी, 8 बज गया तो बच्चों को टिफिन तैयार करना, स्कूल भेजना है, अब जिसकी रात ड्यूटी थी वो देखेगा 8 बज गया, मेरी ड्यूटी समाप्त। अब वाक्य 8 बज गया अगर अनाउंस हो जाए, सब लोग अपनी अपनी ओर से, अपनी अपनी चेतना, अपने अपने एक्शन से अनुसार अर्थ समझेंगे, जबकि हमने तो इतना ही बोला 8 बज गया, लेकिन जिसका जो काम था, जो बुद्धि था, वो उस अनुसार उसको पकड़ा। अब इसमें व्यंजन कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत अंदर से क्लियर कर देता है। अब एक साधारण गर्ल लड़की का वाक्य इतना असर कर सकता है, मैं कैमुत्य न्याय से पहले कहना चाहूंगा दृष्टांत, तो जो कोई प्रेमी जो करुणा से भरा हो, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम, एक तो प्रेमी है ऊपर से दयालु है, और वो जब जन कल्याण के लिए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय कोई वाक्य उच्चारण कर दे, तो इसका कितना असर होता है। प्योरिटी इज द फोर्स का यही दृष्टांत है, ये जो हम लोग बोल लेते हैं उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में लाए, कि शुद्ध भक्त का वाक्य बड़ा असर करता है, वो बोलता है किसी और फेज में लेकिन निकलता है इसका अर्थ बहुत, और ऐसे बहुत दृष्टांत मिल जाएंगे, वो वाक्य तो उसका था, ज्यो प्रीति हाड़ चाम, वो तुलसीदास के विषय में लोग कहते ना, बिल्वन ठाकुर के विषय में भी कहते, जो होती रघुनाथ में हो नहीं, होती नहीं भव भीति। मतलब इतना हाड़ चाम में प्रेम में, इससे एक और एक पर्सन भी अगर भगवान में होता तो जन्म मृत्यु, अब वहीं से निकल गए। लोग कहते कि नहीं, इसमें वो चिंतामणि का या वो उस नगर वधु का था इनके जीवन में, लेकिन ये बाहरी बात है। अरे कितने गृहस्थों को उसकी पत्नी प्रेमिकों ने डांटा, फिर भी माला नहीं करते ना मंदिर आते, तो ये कोई कैसे हुआ? अगर हम सोचे कि ऐसे कोई बोल दे और होता है, कुछ नहीं होता, कुछ कुछ होता है। ओके सब कुछ नहीं होता, किसी किसी को कुछ कुछ होता है कभी कभी, ऐसा मतलब सीधा अप्लाई तो नहीं कर सकते ना हम लोग। हमारे गौड़ीय परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गदाधर भट्ट, जिसका जिसके विषय में ये, जैसे व्यंजना शक्ति की एक बात और करूं, ये तो मैंने कई मुख्य लड़की के वाक्य, किसी स्त्री के वाक्य भी असर कर जाते हैं और वैराग्य की परम सीमा तक आदमी चला जाता है। ऐसा ऐसे दृष्टांत हमें मिलते हैं। अब इसके कारण आप ढूंढते रहो, सुकृति थी, भगवान की कृपा थी, उसके पूरे प्रारब्ध खत्म हो चुके थे, आप साधुओं का काम है ढूंढते रहो, लेकिन हमें वो सब्जेक्ट नहीं है, हमें तो कैमूति ने साइड दृष्टांत। मेरा सब्जेक्ट तो यह कि जो व्यंजना शक्ति में जो शब्द ब्रह्म है वो किसी साधु के मुख से निकले तो कितना कहां तक चला जा रहा है, ये तो एकदम लो बात है जो हम कह रहे हैं। मूल बात तो अब कहने जा रहे हैं आप हमारे आचार्यों के दृष्टांत। जैसे गदाधर भट्ट का एक भजन हमारे वृंदावन में बड़ा प्रसिद्ध है, आपने शायद सुना होगा, सखीरी श्याम रंग रंगी। ये पंच तत्व वाले गदाधर ने, ये भी आप थोड़ा सा, एक और गदाधर भट्ट हुए बाद में, ओके हाँ, क्योंकि सब क्लियर करना पड़ता है, वो राधा शक्ति वाले नहीं। ओके तो गदाधर भट्ट बंगाल में ही रहते थे वो, और उन्होंने एक भजन लिखा ब्रज भाषा में, सखीरी श्याम रंग रंगी सूरती मोही देखी, वो ब्रज भाषा में है, बड़ा सुंदर भाव है। आप लोगों ने शायद उसका लास्ट पंक्ति, कासो कहे कौन पति आवे कौन करे बकवाद, कैसे कही जाए गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। ये ब्रज में बड़ी प्रसिद्ध होती है विद्वत समाज में, कि जैसे गूंगा गुड़ खाया है और उसको कोई बोले कितना मीठा, बेचारा क्या बताए। ये तो हमने जो ये ब्रज वृंदावन प्रेम रस सखी जो शाम के रंग में हम रंगी है, कासो कहे किसको बताए, और कहेंगे तो लोग कहेंगे पागल है बकवाद कर रहा है। तो गदाधर के लास्ट में उसने ऐसा लिखा कि मैं तो अपने शाम के रंग में रंग चुकी हूं, और वो सत्य था, सहजिया तो नहीं थे, ऐसे भी है लेकिन ये तो रियल थे। अब ये भजन देखो, भगवान की कृपा से भक्तों की वाणी का यश बहुत फैलता है। आप अगर विचार करेंगे ना कि भगवान के भक्त जितने भगवत वाणी का यश का प्रचार करते हैं, उससे कहीं ज्यादा भगवान अपने भक्तों की वाणी के यश का प्रचार करते हैं, क्योंकि प्रेम है। यशो लभस कहते हैं ना, यश बड़े, मतलब जैसे प्रभुपाद के प्रवचन ले उनके, कितना ये आप देखिए फैल रहा है और असर भी कितना हो रहा है। आज हम इस्कॉन के भक्तों का हम कुछ संकलन करें, देखें चेतना, तो हम जहां तक समझ रहे दिख रहा है, गीता के वाक्य है, भागवत के श्लोक है, हम लोग पढ़ते सुनते असर होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा फिर उड़ भी जाता है, लेकिन थोड़ा तो होता है, लेकिन प्रभुपाद के वाक्य का ज्यादा होता है। देखा, हम लोग अनुभव कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, भले प्रभुपाद उसको समझाने के लिए कुछ ऐड भी किए होंगे, कुछ पॉजिटिव बातें को कुछ दृष्टांत में लाए होंगे, कुछ और श्लोक कुछ अपनी भाषा में, लेकिन असर होता है। और हम लोग को गीता में भगवान तो बहुत कुछ बोले ऐसा बोल लेते हैं, लेकिन गुरु जो बोला है, बहुत गुरु बोले ऐसा कभी सुना नहीं है। करना मतलब भले ना हो तो दुख होता है, मतलब गीता के इतने सारे श्लोक है, अगर पालन ना कर पाए तो इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन कोई गुरु वैष्णव आचार्य आज्ञा दिया है और नहीं पालन करो तो हमको अंदर से, भले हम लोग इतने भगत तो नहीं है लेकिन होता है कि नहीं बताओ सर, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं कि होता है, हमको तो होता है, गीता का इतना नहीं होता जबकि होना चाहिए। इसका मतलब है कि भगवान ने भर दिया है आचार्यों में और इसका प्रचार भगवान, मतलब उसमें बल बढ़ा दिए है, इसलिए भक्त जो बोलता है वो वेद हो जाता है। यहां तक लिखा है कि वेद में नहीं लिखा तो भगवान अगले जन्म में कर देंगे वेद में, तुमने बोला ना, फिनिश्ड। यहां तक ऐसी बात है, और ऐसे दृष्टांत ऐसे श्लोक भी है कि मेरा भक्त, मतलब नमे भक्ता प्रणश्यति का क्या अर्थ, अर्जुन से बुलवाने का अर्थ यही है कि मैं तो तोड़ सकता हूं लेकिन तूने बोला तो फिनिश, अपना तोड़ सकता हूं तुम्हारा नहीं। भक्त बोल दिया तो नमे भक्त प्रणश्यति का एक अर्थ कि भक्त का विनाश नहीं होता, लेकिन भक्त के वाक्य का भी विनाश
नहीं होने देता, ये मूल अर्थ है उसका। मेरा भक्त बोल दिया तो बोल दिया बस, अभी नहीं है तो मैं कर दूंगा। और कितने ऐसे दृष्टांत है कि प्रारब्ध से भगवत इच्छा से हमारे जीवन में कोई संतान कोई यश नहीं मिल रहे, लेकिन साधु लोग दे देते आशीर्वाद में, संतान दे देते, कुछ भी दे देते, और भगवान पीछे पीछे क्या करे, अहम भक्त करना पड़ता है। न मे देवर्षि प्रियतमो, ये नल कुंवर मणिगिरि ना कभी एकादशी रहे ना सोलम्मा लकी है, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नारद बोल दिया कि इसका उद्धार करना है तो करना है, अभी क्या करे। इसलिए आचार्यों ने सार लिखा, प्रतिजन्म करियाशा चरण रधुबी, नरोत्तम दास को आप बोल दो कि तुम मेरे हो, बात खत्म। फिर मैं योग्य हूं नहीं हूं वो तो भक्त ने स्वीकार कर लिया, अयोग्य को भी इसको लेना पड़ेगा अच्युत को, क्योंकि हम इस्कॉन के हैं। तो बस एक ही सिंबल चलता है प्रभुपाद के, बाकी देखा जाएगा जो जैसे भी है ऐसे वैसे ही है। और हम देखते हैं ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, दुनिया में सब दिख रहा है। ये भक्त की शक्ति है। अब ये भजन गया वृंदावन, बंगाल से लिखा हुआ कागज में कहीं उड़ता उड़ता, और वृंदावन में शुद्ध भक्त की रचना थी, साधु हृदय में घर कर गई। सच्चे प्रेम का सारे जहां में असर होता है, असर नहीं होता समझना तेरा ही कोई कसर होता है, उसको दोष मत दो, अपनी कुछ कमी होगी यार। अब ये वाक्य जीव गोस्वामी के कान में गया कि सखीरी श्याम रंग रंगी। अब लास्ट में लेखक अपना नाम तो लिखता ही है, जीव गोस्वामी ने कुछ संतों को बोला कि किसका लिखा हुआ भजन, बोले गदाधर भट्ट करके है कोई संत और उनका वाक्य है। जीव गोस्वामी ने कहा कि दो संतों को बुलाया और एक श्लोक लिखा और एक भजन भी लिखा जीव गोस्वामी ने भी, हाँ, और बोला कि इसको पहुंचाओ जाके, जहां भी है ये गदाधर भट्ट जी उसको ढूंढो और उसको पहुंचाओ कि वृंदावन से ही हमने उसको पत्र, प्रभुपाद के पत्र के उत्तर आते थे ना ऐसे, समझिए चिट्ठिया गया। अब दो साधु वृंदावन से निकले बंगाल यात्रा के लिए, और जब गए तो गदाधर भट्ट दातुन कर रहे थे ऐसा लिखते हैं, और दो संत वृंदावन से आए। गदाधर भट्ट संतों का हृदय तो शुद्ध है, प्रेमी है, भक्तों को भगवान का स्वरूप ही समझते थे, फटाफट दातुन फेंके, कुल्ला करके खड़ा होकर स्वागत करने, पहले ये साधु की रीति है प्रणाम करना जाना, और हृदय प्रसन्न हो गया। जैसे भागवत में वर्षा ऋतु के वर्णन में है कि बादलों को देख के जैसे मोर नाचता है, ग्रह संसार जैसे लोग नाच, भगत को देख के हम लोग इतने ऊंचे भगत बन गए हैं कि भगत को देख के आ गया चलो निकलो, हम लोग का कहीं उल्टा ही क्यों होता है सब, ये मैं तो बहुत सोचता हूँ, श्लोक ये कह रहा है हम लोग उल्टा हो रहा है। अच्छा क्या है वो गदाधर पर सोचे कि वृंदावन से साधु आए, उनको नहीं मालूम हमारे लिए आए हैं, हमको हम इतने बड़े, वो तो सरल भाव में है कि हमारे आंगन में वैष्णव वृंदावन से आए हैं और निश्चित सत्संग का सुख मिलेगा, भगवत यश सुनने मिलेगा, ये उनका भाव था। आप लोगों को हम लोगों को होना चाहिए ये। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं गोदावरी के तट पर, प्रभु कहे तुम्हार मुखे किछु सुनीते होय मौन, मैं चाहता हूं आपके मुख से कुछ सुनो रामानंद राय, ये भाव होना चाहिए ना अंदर से। हम लोग को तो ये भाव होता नहीं, कभी होता है तो ये भाव होता है कि चलो थोड़ा सुना दो इन लोगों को कि मैं भी कितना आगे बढ़ चुका हूं। ये कह रहे कि मैं सुनना चाहता हूं आपके मुख से, भगवत भागवत सुनने मिलेगा, इससे बढ़कर कुछ है नहीं। सुखदेव कथा कह रहे तो यत्री गौतम भागवत के रचयिता नारद ये सब सुनने ही आए हैं, चेक करने नहीं आए। हम लोग कभी सुनने बैठते तो चेक भी कर लेते, देखते कि कहां गलती कर रहा है कितना गड़बड़, ये भी हमारों की एक विशेष वैष्णव सेवा ही है जो बिना दिए हमने ली है। अरे कुछ बोल दिया साधु है कहीं सुना होगा, कोई शुद्ध कोई सिद्ध नहीं है, भाव सेवा का है तो उसको नजरअंदाज करके उसने जो अच्छा बोला है उसको पकड़े। और ये भी हमारे वैष्णव अपने ही है तो कभी प्रेम से प्रभु जी थोड़ा ऐसे एकदम ऐसा भाव कहाँ है, हम लोग तो देखो देखो वो ऐसा बताया ना, गलत है, यही तो प्रचार है। ये प्रचार हमको बोला नहीं गया, हमने अपनी ओर से लिया है प्रेम से। इसीलिए आचार्यों की जीवनी से बहुत प्रेरणा मिलती है प्रभु जी। ये भागवत है ना भगवान का नहीं, भगवान के भक्तों का गुण है इसमें। भगवान का गुण सुनते ना तो ऐसा कहते प्रतीति बढ़ता है, मतलब भगवान में विश्वास बढ़ता है, लेकिन भक्तों के गुण सुनते ना तो भगवान में प्रेम बढ़ता है। विश्वास से ज्यादा महत्व प्रेम का है। विश्वास एक सीढ़ी है और प्रेम है तो विश्वास अपने आप है, लेकिन विश्वास है प्रेम हो चाहे, कई भक्तों का आपस में विश्वास है प्रेम नहीं होता प्रभु जी। तो भक्तों का जब हम गुणगान सुनते हैं तो भगवान में क्या बढ़ता है, हमारा प्रेम बढ़ता है, और भगवान की सुनते हैं तो थोड़ा भगवान पे विश्वास बढ़ता है कि हाँ भगवान भक्तों के रक्षक पालक वत्सल है, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन वो बड़ी ज्यादा सुपीरियर हो जाती। अब ये तो बड़े खुश हो गए, तब इन्होंने पत्र दिया कि हम वृंदावन से आए हैं और श्रीपाद जीव गोस्वामी ने आपके लिए ये संदेश, इन्होंने खोला, उसमें लिखा था कि बिना किसी साधु के संग से श्याम रंग कहां से मिला, आपने कहा सखीरी श्याम रंग में मैं तो रंग गई, लेकिन बिना वैष्णव संग किए या कहा, मतलब हमारा प्रश्न जीव गोस्वामी का कि आपका भजन बता रहा है कि आप श्याम प्रेम रंग में मस्त हो, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कहां से पाया, कृष्ण प्रेम तहां जहां तहां संबंध, यहां भी एक गंध भी नहीं हो सकती उसके बिना, तो हम जानना चाहते कि आप कहां से पाए और कितना कैसे पाए। और उसमें एक श्लोक है स्तवावली में है, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदंकान असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्ता कथ श्याम सिंधु रसावगाह। कथ श्याम सिंधु रस में अवगाहन कैसे हो सकता है, तीन बातें करनी पड़ेगी, अनाराध्य राधा पदाम्बोज, बिना राधा रानी की कृपा उनके चरणों की कृपा के बिना, अनाश्रित्य वृंदाटवितत और बिना वृंदावन धाम का आश्रय लिए बिना, राधा रानी का आश्रय लिए बिना, और राधा और वृंदावन का जिसने आश्रय लिया है गोपी भाव भावित जो आचार्य जो गुरु वर्ग है असंभाष्य, उनके साथ तुम्हारा सत्संग नहीं समर्पण नहीं, कथम श्याम सिंधु रसावगाह, ये हो नहीं सकता। बंगाल में बैठे बैठे तुम बंगाली लोग ब्रजवासी कैसे हो गया, ये भी हमारा प्रश्न है, मतलब एक बाहरी और से बता रहा हूं। ये प्रश्न पढ़ते एक मिनट नहीं रुके, वो समझ गए व्यंजना शक्ति क्या है कि ये प्रश्न में ही उत्तर है, ये प्रश्न में ही अपनी अपनी चेतना से व्यक्ति अब पकड़ता है। अब जीव गोस्वामी का ये प्रश्न नहीं वास्तव में क्या था, एक आदेश था, एक साधना की बड़ी सीढ़ी बताई जा रही थी कि ये रस वृंदावन से कनेक्ट है और इसको दूर बैठे बैठे होगा नहीं। तो गदाधर वहीं से दौड़े, इतने सुंदर वक्ता भारत के इतिहास में भागवत, क्योंकि हम लोग का ये काम है, तो हमारी वक्ताओं में कौन कौन हमारी परंपरा में कैसे कृपा, जैसे हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो देवानंद पंडित का कैसे गड़बड़ हो गया, किसका भागवत, महाप्रभु गदाधर पंडित के, कौन भागवत की परंपरा में परफेक्ट है और पाए है और कौन चूक गए है, चेक तो करना पड़ेगा ना, हमें उसको पाना है ना भाई कि अपनी ओर से मूर्खों के चेलों की वाह में प्रभु जी चेलों को लेकर दौड़ते ही रहोगे, खुद चेले बनोगे तब पाओगे, चेला बनाने से कोई नहीं पाया, चेला बनने से ही कोई पाया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। सच्चे गुरु के चेला तो रोज है मेला उसके लिए, फिर मेले न केला फिर भी अकेले में मेला, वो अपनी मस्ती में रहता है क्योंकि भागवत उसका धन है। तो ये व्यंजना शक्ति, अब तो बात प्रश्न लेकिन ये दौड़े, मैं ये कहना चाहता हूं कि भागवत के शब्दों में इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान है, और ऊपर से कोई सुखदेव जैसे साधु श्रील प्रभुपाद या रूप गोस्वामी आचार्यों की ये टीका है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि हमारे अंदर वैराग्य को प्रकट कर देती है, विषया शक्ति को तोड़ देती है, ज्ञान भ्रम को भूल को निकाल सकती है और हमें भी प्रेम पथ का पथिक ब्रजधाम की ओर ले जाते। इसीलिए महाप्रभु ने कहा प्रेमा पुमार्थो, श्रीमद भागवत प्रमाण अमलम पुमान प्रेम एवं अर्थ, मनुष्यों का एकमात्र लाभ है प्रेमा, और उसको प्रदर्शित करने वाला पहुंचाने वाला ले जाने वाला प्रेम ग्रंथ है श्रीमद भागवतम। और ये प्रेम पुरुषोत्तम चाहे चैतन्य महाप्रभु को कहिए या पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को कहिए, इसी का स्वरूप है ये श्रीमद भागवतम। इसीलिए इसका आश्रय लेना ये सब बहुत बड़ा काम है, सारा विधि निषेध साधन उपाय सब इसके आधार में है, इसके अंदर टीका हुआ है, इस बात को जब हम समझते हैं तो कितना श्रद्धा से समर्पण से सुनने बैठेंगे, फिर वो कचरा नहीं रहेगा चेक करना गलती करना, भाव आएगा कि यार मेरा सौभाग्य है कि हमें प्रभुपाद का तात्पर्य मिलेगा, कुछ जड़ भरत के कुछ वाक्य मिलेंगे, सुखदेव के मुख से निकले हैं। अब समझो नहीं ना तो भी असर करेगा, समझ जाओ तो समाधि तक ले जाएगा। ये शब्दों में शक्ति बहुत है, भक्ति भरा है, प्रेम भरा है, इसीलिए हमें बहुत श्रद्धा से रिस्पेक्ट से समर्पण भाव से भागवत के श्लोकों को बोलना है, सुनना है, पढ़ना है, समझना है। ये हमारा जीवन है, कथा मात्रैक जीविनम, कथा जीविका नहीं है, आज हो रहा है, कथा क्या है, जीवनम है, कथा जीवन, तप्त जीवनम गोपियों ने जैसे कहा सनत कुमारों के विषय में आया है, लीला रस में मत रहते थे, और ऐसे मत में जो भक्त है ऐसे भक्तों का आश्रय लोगे तभी तो मिलेगा, तभी तो पाएंगे इस धन को। तो ये ब्राह्मण उवाच, ये जड़ भरत के वाक्य, चलिए मैं तो कहीं आना था कहीं निकल गए हम लोग, लेकिन जो भी है सब भागवती है, कुछ भी जानने सीखने मिलता है तो कम नहीं है ये। अब ये ब्राह्मण जी मतलब जड़ भरत जी अपना निजी आत्म स्वरूप, मतलब जो कहते ना ज्ञानी न तत्व दर्शिन, ये गुरु मिल गया है इनको, रहुगण जी को। श्रीधर स्वामी इस अध्याय के उपक्रम में लिखते एकादश संपृष्टो रहुगण महिवृता, राजा रहुगण ने जो ये 11वें मतलब पहले जो प्रश्न पूछे गए, उपादिशत परम ज्ञानम स योगिनी गद्यते। रहुगण जी के प्रश्न तो कोई खास नहीं था, वो तो चिल्लाया था और पता नहीं क्या क्या बोले थे रहुगण, आप सुने हो, ऐसा नहीं कि कोई परम तत्व जिज्ञासा कर दिए थे और जैसे गीता में प्रश्न किए सेवा की, ऐसा कुछ तो था नहीं। लेकिन जड़ भरत जी ने एक वाक्य बोल दिया, रहुगण के चक्षु खुल गए। वो तो डांटे थे कि भाई बारम क्या ये भार कौन ढो रहा, लेकिन ये एक कृपालु साधु जो अनायास भगवत इच्छा से बोल रहे, साधुओं का कभी कभी कृपा स्वतंत्र होता है, देते हैं या नहीं देते। अब यहां तो कोई जिज्ञासा नहीं, ना कोई समर्पण ना कोई प्रश्न, लेकिन कभी किसी से नहीं बोलने वाले, अपने बाप से भी बात नहीं करने वाले आदमी, ये एक तरह कैसे अड़क अक्कड़ कहा जाएगा इस अवधूत को, मतलब ये जड़ भरत जी को अवधूत स्थिति, किसी से बात नहीं करते, गला कटने जा रहा फिर भी बोलने वाले आदमी नहीं। बताओ हम लोग का सीट राइस कोई एक चुक जाए तो बोलते प्रभु जी इधर 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 हम बैठे हैं, और इसका गला कट रहा है आदमी बोल नहीं रहा कि मैं ब्राह्मण, ये आदमी बोलने लग गया कुछ बात तो है ना, सोचना पड़ेगा कि नहीं बताओ। निश्चित भगवान बुला रहा, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी कभी भी कोई वैष्णव आपको कृष्ण विषय में आत्म विषय में बताता है ना, और कुछ भी कारण ढूंढते रहो, सुकृति पर प्रारब्ध या कर्म जो भी पुण्य जो भी, मूल बात है भगवत कृपा। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वेद पाए, तार उपदेशिले मंत्रे पिचासी पला। ये साधु मिल जाना ये भगवान की विशेष कृपा है, और उनके मुख से प्रवचन मिल जाना भगवत तत्व विषय में, ये स्पेशल मर्सी है जो बरस रही है रहुगण के ऊपर। तो इस श्लोक में पहले क्या कर रहा है देखिए, संबोधन नरेंद्र, राजा ही मान रहे थे ना अपने आप को, मानो एक रूप से कटाक्ष है कि आजकल का कुछ टाइम का राजा, मैं पूरे भारत का राजा था, तू एक देश का छोटा सा, मेरा पूरा चला गया तो तेरा बचेगा नरेंद्र। लेकिन वंशीधर जी प्रभु जी लिखते हैं इसमें कि नराणामपि तद ज्ञानम शक्यते, अगर मनुष्य होगा ना तो भी मेरी ये बात समझेगा, नराणामपि इदम ज्ञानम, ये जो बोलने में जा रहा हूं ये जो बोल रहा हूं ये श्लोक में, अगर मनुष्य मतलब दिमाग बुद्धि थोड़ी होगी शक्यते, त्वम तु नरेंद्रो अपि, तुम तो नराणाम राजा अपि, तो तुम्हारी बुद्धि तो राजा ऐसे थोड़ी बनता है। चाणक्य ने लिखा है कि संसार में सामान्य लोगों की जो बुद्धि होती है ना, उससे 36 गुना बुद्धि किसी व्यापारी की बनिया की होती है, क्योंकि उनका कैसे धन इकट्ठा कर लो। सामान्य जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना कोई भी, उससे 36 गुना बुद्धि बनिए में होती है, और 36 बनियों की बुद्धि एक चोर में होती है, उनका भी खिसका लेता है वो, तू बेटा इकट्ठा कर गिनता रहे, मैं एक ही बार में तुम्हारा शॉट मारूंगा। और ऐसा कहते हैं कि 36 चोरों की बुद्धि एक मंत्री में होती है, ऐसे ही नहीं है मोदी जी, ये भले खींचते रहे अपनी, मंत्री को ऐसे थोड़ी होता है, जो राजा को भी सलाह देता है, उद्धव मंत्रियों का भी इद्भिदु रहा, नीतियां चलती है इनकी जो बोलते हो। चाणक्य भी एक मंत्री रह चुके थे, मतलब ऐसे ब्राह्मण थे लेकिन सलाह मंत्रणा तो करते ही थे चंद्रगुप्त को। लेकिन ये 36 मंत्रियों की बुद्धि एक राजा में होती है, 36 मंत्रियों को कंट्रोल करता है एक राजा। तो तम तो नरेंद्रो अपि नराणाम च नराधिपम, भगवद्गीता विभूति, तो तुम तो जरूर समझोगे इस बात को बेटा। मतलब रघुगढ़ जी नीचे है, अब ये भी पालकी से तो उतर ही चुके हैं महाराज, लेकिन बैठे अभी ये समझ लो। तो ब्राह्मण बोल रहे, एक साधारण ब्राह्मण, और एक संदेश भी है पूरे समाज को कि कोई भी बड़ा राजा बन जाए, जब ब्राह्मण मिले ना तो उसको सुनना ही चाहिए। क्योंकि आज दुनिया में राजा विकास करता है, जैसे हमारे मोदी के गुजरात में बड़े बड़े बोर्ड लगे, 109-7, 109 विकास, मतलब सबकी सबका विकास होना चाहिए। अभी विकास ढूंढ रहे हैं हम लोग कहां है वो, लेकिन बोर्ड तो लगे हुए हैं, विकास तो सब चाहते हैं। और आज का एजुकेशन सारी सिस्टम इकोनॉमी जो भी आप देखिए विकास की ही बात करेगी, प्रगति ही बात करेगी, लेकिन किसके विकास की ये इसको पूछो। शरीर के विकास में आत्मा का तो विनाश हो रहा है, उसका क्या? आज देखिए सारी साधन सामग्री बुद्धि किसके विकास में, बॉडीली कौन से, देहात्म बुद्धि में ना, कि अच्छा कमाओ खाओ पियो डिग्री जो भी है, लेकिन आत्म तत्व ऊपर कौन विचार कर। इदम तीर्थम वृथा भ्रम्यति जना, आत्म तीर्थम न जानाति कथम मोक्षो भवेत। तीर्थों में भी लोग घूम रहे, साधु लोग, वो लोग बिजनेस वाले अपने में घूम रहे, लेकिन आत्म तत्व पर तो कोई ध्यान ही नहीं जा रहा। पहला बेस तो यही है, प्रभुपाद तो यहीं से चालू किए, पूरी दुनिया अटकी थी वहां से उसने क्लिक लगाया आत्मा के ऊपर जो मूल है। तो आत्मा का तो विनाश हो रहा है ना, और आत्मा काम क्रोध भौतिक विकारों में आ रहा है, अब विकास कहां होगा? तो सबसे पहले आत्म तत्व पर विचार होना चाहिए। हम आत्मा है, असत के प्रति जिसका आकर्षण है, ये पूरा जगत असत है, और पूरा विश्व का आकर्षण किसमें है? उसी असत वस्तु में। सनातन सत वस्तु जो आत्म तत्व है उस पर किसी का विचार नहीं है। वेदात्म तत्वम न एव, जब अगले लाइन में न पहला ही शब्द दिया है, आत्म तत्व न वेद भ्रमति ही है, यही संसार में भ्रमते रहोगे। पहले आत्मा को जानो। आत्मा शब्द नो न तो केवल आत्मा रामश्च मुनयो, कितने अर्थ हो गए भाई, परमात्मा भी हो गया। आत्मा मतलब भगवान को जानो, अपने आप को जानो, भगवान और आपके संबंध को जानो, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से चालू कर लो पूरा। और ये न तत्व वेद माने जानना, नहीं जाना तब तक भ्रमति है लोके, ये आत्मा जन्म मृत्यु में कब स्वर्ग उठाए नरके ये चलता ही रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अच्छा ये आत्म तत्व को क्यों नहीं जान रहा है, ये सारे लोग क्यों नहीं जान रहे? तो कहते हैं तनुभृता, ये जो हे राजन, ये जो शरीरधारी देहात्म बुद्धि जीव, अच्छा ये जीव को तनु क्यों मिला? कर्मणा जायते जंतु, अपने अपने कर्मानुसार। अब गीता और बेसिक बातें आप लोग बहुत सुने हैं, हम लोग केवल स्मरण कर रहे हैं कि प्रारब्ध कर्मानुसार जीव तनु प्राप्तम प्राप्त हुआ है, बराबर। और उसके कारण क्या है कि तनु प्राप्त, मतलब जीव होता क्या है? तो जड़बर जी का कहना है कि भ्रमती है, इस संसार में भ्रमण कर रहा है अलग अलग योनियों में, अलग अलग अवस्थाओं में। गीता के सारे श्लोक आप दूसरे अध्याय के कर लो कनेक्ट, कौमारम यौवनम जो भी है। लेकिन वयुनोदयेन ज्ञान के द्वारा विधूय माया, माया मतलब अहम मम इति अज्ञान। वंशीधर के बाद लिखने वाले वीर राघव इस पे लिखते हैं माया शब्दे अहम मम इति अभिमान। विजय ध्वज जी लिखते हैं भ्रांति एव, माया मतलब भ्रांति, जो नहीं है प्रभुपाद लिखते जो नहीं है वो मान लेना। अब पढ़िए प्रभुपाद का तात्पर्य, प्रभुपाद लिखते हैं यहां पे कि जब किसी मनुष्य का, मनुष्य देहात्म बुद्धि में लिप रहता है, मतलब आत्मा को नहीं जान रहा है, अपने आप को देह ही जान रहा है, उसकी बुद्धि के शरीर को ही सुखी करूं उसी में लगा है, तो वो अपने को किसी परिवार का, गुजराती हूं मैं, पटेल हूं, या मैं भारतीय हूं, देश का मानता रहता हूं, और इस तरह उपाधि, इसको उपाधि कहते हैं। तब प्रभुपाद कोट करते हैं नारद जी की बात, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त। देखिए उपाधि क्या है, हमारे भारतीय हिंदी साहित्यों में उपाधि के बहुत फेज होते हैं, जैसे अर्थ होते हैं। उपाधि मतलब एक टाइटल, कि इसको उपाधि मिली गोसाई जी, ठाकुर जी उपाधि मिलती ना, टाइटल मिला पुरंदर, इंद्र की उपाधि है, उपाधि मतलब टाइटल। और एक एक बहुत सिक्वेंस चलता है ट्रायंगल, वो आदि व्याधि उपाधि, सुने होंगे आप लोग, आदि व्याधि उपाधि। आदि मतलब मन का दुख, व्याधि मतलब शरीर का दुख, शरीर में कुछ कष्ट हो गया, रोग हो गया तो दुख हो रहा है, और मन में टेंशन है तो आदि और व्याधि। उपाधि क्या है, प्रश्न फिर बना है। एक तो टाइटल, अभी इस श्लोक के अनुसार उपाधि मतलब टाइटल, तुम ये पुरुष हो, स्त्री हो, गुजराती हो, भारतीय हो, ये तुम्हारे शरीर की उपाधि है जो उस अर्थ के अनुसार। लेकिन कोई हमको कहे कि एकदम सरल करो इसको और थोड़ा मोड़ी और उसको क्लियर करें, तो उपाधि मतलब जो हम नहीं है, ऊपर से लिया हुआ दूसरे का टेंशन, इसको हिंदी में कहेंगे जो हम लेते रहते हैं, जो हम नहीं है ऊपर से लिया, जो हमें लेना भी नहीं चाहिए लेकिन ऊपर से लिया हुआ दूसरों का टेंशन, उपाधि। आधी से मतलब आधी से जोड़ा, ऊपर से तुमने एक्स्ट्रा तुमने लिया है, अब तुमने एक्स्ट्रा लिया, मैं ये हूं, मैं हूं, तुम कुछ हो नहीं। जैसे अभी परिचय दे रहे थे प्रभु जी, देना चाहिए, एक सिस्टम है, लेकिन जिसका दिया जा रहा है या जो सुन रहा है, हम सबका एक ही परिचय है, जीवेर स्वरूप होय ईश्वर नित्य दास। इसके अलावा जो भी है ऊपर से लिया हुआ टेंशन कम करो। लोग कहते मेरा टेंशन तुमने बढ़ाया, कोई नहीं दिया, हमारा एक ही है कि हम कृष्ण के दास है, इसके अलावा जो भी मान रहे हो ना, आई एम प्रेसिडेंट, टेंशन लो बेटा तुम, और कुछ टेंशन भगवान की गुरु की आज्ञा में हमें लेना है जो हमारे उद्धार करे, बाकी जो एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं उसको तुरंत तुरंत छोड़े, आज पुरुषोत्तम आज ही छोड़े इसको। ये उत्तम काम होगा, ये पुरुष का उत्तम काम है कि ये ऊपर से लिया हुआ टेंशन जो भक्ति में बाधा दे रहा उसको छोड़ो। जो दिया ही नहीं हमने अपने से लिया है, तो हम कृष्ण के दास है, ये मूल हमारा परिचय है, बाकी सब उपाधि है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि विनिर्मुक्तम विशेषण, आज और सब तरीके से मुक्त हो जाओ। और ऋषि कह रहे ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। अच्छा एक प्रश्न होगा, शॉर्ट एंड स्वीट आगे बढ़ते हैं, कि ज्ञान के द्वारा, अच्छा ज्ञान कैसे प्रकट होता है, हम बैठे थे और बुद्ध की तरह वो पेड़ के नीचे प्रकट हो जाएगा, ऐसा है ना, वो पेड़ है वो बिहार में ज्ञान प्रकट हो गया, वो तो भगवान है, वो कोई कोई परम तत्व होता है, कोई उन्नत आत्मा होता है, उनकी बात है। हम संसारी बद्ध जीवों को शास्त्र श्रवणेन माध्यमे, चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ज्ञान के द्वारा माया को धो डालो, भ्रांति को भ्रमणा को धो, तो ज्ञान कैसे प्रकट होगा, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा शास्त्र श्रवणेन, शास्त्रों से साधुओं से हमें ज्ञान प्राप्ति होगी। और ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा प्रभु जी, ज्ञान प्राप्ति से माया को अज्ञान को आप धो डालो। अब एक प्रश्न है इस श्लोक में, ध्यान दीजिए कि भाई ये शरीर देहात्म बुद्धि वाला जीव माया के कारण अज्ञान के कारण जन्म मृत्यु में घूम रहा, आत्म तत्व को नहीं समझ रहा, और उसी को क्या करना चाहिए, शास्त्र से साधु से ज्ञान श्रवण करके माया को धो देना चाहिए। मतलब हमारे हमारी साधना भजन क्रिया तक बात पहुंच रही है, साधु संघ भजन क्रिया तक चलो भाई करो। लेकिन प्रश्न अब है मेन, ये तीसरी लाइन है ना बड़ी सार गर्भित श्लोक में, कि ये प्रश्न उठाते गिरिधर लाल टीका में प्रभु जी, ननु बहव शास्त्र श्रवण अभ्यास रत एव। हम देखते हैं कि बहुत लोग शास्त्र अभ्यास ज्ञान देते भी है लेते भी है, ज्ञानी भी है, तथापि फिर भी देखा जाता है कि वही नौका चल रही है। ज्ञानी तो ज्ञान तो ले रहे हैं, हम लोग दे भी रहे, दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी है, जैसे हम लोग भी उसमें अपने आप को डाले, कुछ दैन्यवश डाले या सत्य डाले, जो भी है डालना ही चाहिए। कि अरे सुन तो बहुत रहे ज्ञान तो, बस फिर भी असत आकर्षण, देहात्म बुद्धि, राग द्वेष, अगर हिसाब किया जाए इसको में हम लोगों का, तो बढ़ रहा है घटने की जगह। अगर ईमानदारी से, यार पहले कम था यार, अब तो ज्यादा लग रहा है कि मैं ही सु कर लूं, पहले थोड़ा कम रह गया था, ज्ञान ऐसा खतरनाक बढ़ रहा है क्या, चेक करना पड़ेगा, कहीं उल्टी गंगा क्यों है, कहीं तो मिस्टिक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि शत्रु जया अभावे तुम्हारे अंदर ज्ञान तो है, ले भी रहे हो, माया धूल ज्ञान प्राप्त भी हो रहा है कि तुम आत्मा हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम्हारे जो शत्रु है ये पांच ज्ञानेंद्रिया जिसके विषय शब्द रूप रस गंध का ये आकर्षण और उसके ऊपर बैठा हुआ ये मन, तो आचार्यों ने षट शत्रु पर पांच इंद्रिया ज्ञान की जो हमें खींचती है और मन, और दूसरे आचार्य लिखते काम क्रोध षड रिपु, ये है। तो ज्ञानी हम है, ज्ञान ले भी रहे लेकिन माया धो भी रहे, लेकिन असर नहीं हो रहा है, हमारा लक्ष्य हमारी सफलता मतलब सक्सेस नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? बोले शत्रु को जीता नहीं। और शत्रु नहीं क्यों जीत पा रहे? क्योंकि तुम विमुक्त संग नहीं हुए। तो इसका अर्थ कॉमन मतलब बेसिक सार क्या निकलेगा जानते? तुम ज्ञान लो दो, लेकिन किसी विमुक्त साधु पुरुष की सेवा नहीं करोगे। महत सेवा द्वाराहु विमुक्ते, जब उनकी कृपा नहीं मिले, क्यों? ज्ञानी तो पंडित तो बन गए तुम लोग, वाहवा भी हो गई, लेकिन तुम्हारे अंदर काम को जैसे भक्तिनाथ ठाकुर का दैन्य है, लोभ हत सदा कामी प्रतिष्ठा लागी है सठ आचरण, लेकिन अंदर से असत आकर्षण है। और अभी हम नहीं कर रहे, वो भी शासन गुरु और शास्त्र का, अगर कहीं नहीं देख रहा है तो पानीपुरी तो जाएगी अंदर। ये तो अभी क्या है, ड्रेस ऐसा है, तिलक बिलक है, इसलिए रोके हुए है भाई, चलो यमा कि हमें नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम लोग कहते चलो भगवान को भोग लगा के लाओ भाई, एक ऑप्शन निकाल लो कैसे भी युक्त वैराग्य के नाम पर, कैसे भी चांस तो हम ले ही ले लेंगे हम लोग लेकिन अंदर से कोई गया ऐसा नहीं है, वहम में नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि जब तक शुद्ध भगत चरण रेणु होगा नहीं प्रभु जी, मतलब वो बात ऋषभ देव की लागू पड़ेगी, प्रीति न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। विमुक्त पुरुषों के संग से अपने विकारों पर विजय करोगे नहीं, उन साधु पुरुषों की सेवा से भगवान का भजन नहीं करोगे, तब तक भ्रमती है लोके। ये श्लोक केवल ज्ञानी लोग इसी में अटक जाते कि वेद पढ़ लिया, आत्म जान लिया, अपने आप को विमुक्त मानी न, विमुक्त मानी न एवं न तो मुक्त एवं लेकिन हम वैष्णवों के लिए आचार्यों ने यह फिलोसॉफी दिया कि हमें विमुक्त संग बनना पड़ेगा। संग मतलब जानते ना, निर्माण मोह जित संग दोष। लास्ट समाप्त करते हैं, समय भी देखना है। तो संग रहना और साथ रहना, अब ध्यान दीजिए कि हम गुरु वैष्णवों के संग में है और हम गुरु वैष्णवों के साथ है। लग रहा है कि हम लोग गुरु वैष्णवों के साथ में है, सोसाइटी में है, अच्छा, लेकिन संग का अर्थ होता है आसक्ति, अटैचमेंट, फॉलो करना, प्रभु पादानुग होना, रूपानुग होना। अभी हम लोग दीक्षा शिक्षा से आश्रित हुए तो साथ तो है, लेकिन संग अभी अंदर से किसका है वो आप जाने और ठाकुर जी जाने, समझा? विमुक्त संग मने भले हम अभी गुरु के साथ नहीं है ना, तो प्रभुपाद जी के साथ, लेकिन प्रभुपाद के बुक्स, प्रभुपाद का आदेश, आचार्यों की बातें हमारे अंदर जीवन का लक्ष्य बन चुकी है, तो हम उनके संग में है। मुझे कहना है लास्ट कि साथ में रहे बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है संग में रहे। और संग का अगर आसक्ति करते हो तो फिर बदल डालो, और कि जो आसक्ति तुम्हारी लोभ उसमें है संसार में, वो साधुओं में कर डालो, संसिद्ध कहते हैं ना मोक्ष द्वार अपावर स एव साधु सु। अगर ये जो आसक्ति है, ये अटैचमेंट संसार विषयों में, वो अगर साधुओं में हो गया तो मोक्ष द्वार अपावृतम। और कुछ रह जाएगी साधना में कमी हमारी, तो अपने आशीर्वाद से वो काम बना लेंगे, आधा काम वो कर लेंगे, गुरु लोग दयालु है, आचार्य लोग, हम अपनी ओर से ट्राई करें ईमानदार, बाकी का काम उनका है और विश्वास है हमें, तो बड़ी सीधी बात हो जाएगी। तो यहां पर एकदम क्लियर कट सुंदर श्लोक है कि वेदात्म तत्वम, आत्मा परमात्मा को जानो, संबंध को जानो, भजन करो, साधु पुरुषों के संग में उनकी सेवा आज्ञा शासन में रहकर विकारों को जीतो, और उनके द्वारा जो गीता भागवत का ये भक्ति ज्ञान में भी बहुत सारा सेक्शन हो जाता है, ज्ञान कांड उपनिषद आत्मा वो वाला नहीं, कर्म कांड वाला, भक्ति परक ज्ञान, शास्त्रों वाला हमारा सार ज्ञान, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमको और उस ज्ञान के द्वारा माया मतलब जो ये भगवत भक्ति के अलावा जो भी उसको सबको धो डालो, नहीं चाहिए हमको, जहां कृष्ण तहां नहीं माया बस, और कृष्ण नहीं वो सब माया है हमारे, तो उसको धोकर इसलिए हे राजन। और जब तक न यावत, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तावत भ्रमतीव, तब तक घूमते रहोगे बेटा, घूमते ही रहोगे, और कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। तो ये जड़ भरत जी एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं और इसमें वो अनुभव कर चुके हैं, उसमें वो घूम चुके हैं। वो घुमा हुआ आदमी बोल रहा है कि तुम मत घूमो यार, मेरा ये हाल हो चुका है, तो तुम लोग को मैं डायरेक्ट पहुंच बिना घूमे सीधा पहुंचाना चाहता हूं, तो उपाधि से मुक्त हो जाओ। और एक ही उपाधि, दासो हम कौशलेंद्र से, जैसे हनुमान जी ने कह दिया रावण से बाण, कि हम कृष्ण के दास है, और जो कृष्ण के दास है वो कृष्ण के खास है, और जो खास है वही उनके पास है, बाकी सब आसपास है, और बाकी तो पास ही है, सीधे ही जा रहे हैं कुछ तो रख लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो थैंक यू आप सभी वैष्णवों को, कुछ ज्यादा अतिक्रमण कर दिया अविवेक, तो आप क्षमा करेंगे। अच्छा श्लोक था, आनंद देने वाला, और मैं कुछ तत्व ज्ञान तरफ ही चर्चा करता रहा, फिर भी कुछ त्रुटि हो तो आप सुधार लीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मेरा सौभाग्य वाड़ा में भगवत गुण गाने का अवसर दिया, मैं प्रयास करूंगा अपनी ओर से गुरु वैष्णव आचार्यों की वाणी को आप साधु चरणों में रखो। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद कुंडल कृष्ण प्रभु। हमार आप 25 साल से एक साथ थे, लेकिन आज पहला संघ मिला ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि इस्कॉन में इतने भगत हैं और इतने हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, हर एक का हम लेक्चर बैठ के सुन नहीं पाते। तो मैं लगभग 20 साल से इनको जानता हूं, लेकिन प्रथम बार बैठ के इनकी कथा सुन रहा हूं। और वास्तव में आपने जैसे श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का विश्लेषण किया, यहाँ पर भागवत विद्यापीठ के बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं और हमारे आचार्य गौरांग दर्शन प्रभु भी बैठे हैं, तो हम लोग सबके लिए बड़ा प्रेरणा का विषय था कि जैसे यहाँ राधा दामोदर मंदिर में आपको लेके जाएंगे भक्त लोग कभी आपके 3 दिन में, वहाँ पर श्री प्रभुपा जी के विग्रह के सामने वही जो अहमदाबाद से छपी हुई कृष्ण कि जो
टीका
गीता है वो, तो मेरे को दूसरा माइक दीजिए, वो कई आचार्यों की टीका वाली जो ग्रंथ है, लेकिन आपने अपने कथा के माध्यम से उन टीकाओं को किस तरह पढ़ना, और आपने नोट किया होगा आदिकेश्वर प्रभु आज इन्होंने जो है वंशीधर जी और श्रीधर स्वामी और श्री वीर राघव आचार्य, कई आचार्यों की टीका उन्होंने वर्णन किया, जिनको लेकर श्रील प्रभुपाद जी रात्रि के समय बैठते थे और फिर उन टीकाओं को लेकर श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तिवेदांत परपोर्ट्स जो लिखा, तो उन्होंने हम लोगों को इन सभी आचार्यों की टीकाओं का भी आज अपने कथा के माध्यम से बड़ा सुंदर दर्शन कराया। और खासकर ऐसे वर्षा ऋतु में जब बाहर हम कुछ नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, और ऐसा कथाकार हो और ऐसी कथा मिले, तो व्यक्ति बाकी सब कुछ छोड़कर कथा ही सुनेगा। लेकिन हम लोग के बाकी भक्तों की सेवा बहुत है। लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं और सुबह 10 से लेकर 1 बजे और शाम के 3 से 5 के बीच प्रभु जी की रोज कथा महावन में होगी, और वहाँ पर जाकर जो भी सुनना चाहें श्रवण के लिए वहाँ पर सभी आमंत्रित हैं, प्रसाद अपने अपने जगह लेना। और जो आपने प्रभु बात कही, यहाँ पर भी जो है भगवान को भोग लगा हुआ गोलगप्पा चलता है।
चलाना ही चाहिए, हम भी खाते हैं।
लेकिन जो प्रभु जी ने इतना अध्ययन किया श्रीमद् भागवत का, ये वास्तव में इस्कॉन के सभी अभी के जो भक्त लोगों के लिए आवश्यक है। जो स्टैटिस्टिक्स है, इस्कॉन का 55 करोड़ गीता और भागवत वितरित हो चुका, लेकिन अभी तक केवल 8,000 भक्तिशास्त्री हुए और 200-250 भक्ति वैभव भक्ति वेदांत वगैरह हुए। अधिकांश जितने भागवत में बहुत डीप स्टडी किए हुए लोग हैं, अधिकांश मैं देखता हूं आपके ही गुरुवर्ग में है, राधा गोविंद महाराज के शिष्यों में, महाविष्णु महाराज के शिष्यों में, और बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन डीप स्टडी जो भागवत का बहुत आवश्यक है। और एक विशेष बात जो मैं कहना चाहूँगा कि राधा गोविंद महाराज से इन्होंने भागवत तो पढ़ी, लेकिन उसको अप्लाई करने का मौका इनको मिला श्रीमान यशोमती नंदन प्रभु के चरणों में, क्योंकि आप में से कई लोग उनको नहीं जानते। अगर यशोमती नंदन प्रभु जी को उनकी सेवा कर ली और उनको संतुष्ट कर लिया
ये बड़ी बात गोवर्धन उठाने जितना कहा
इतने स्ट्रिक्ट में से स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टेस्ट तो इसीलिए जो हम लोगों के कथाकारों के सर्किट में जो चर्चा होती है, गुजरात में बहुत सारे कथाकार हैं, लेकिन यशोमती नंदन प्रभु ने कुंडल कृष्ण प्रभु को कथा करने का लाइसेंस दिया था तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उनका जो योग्यता है, क्योंकि कई सालों तक बड़े प्रेम से उन्होंने सेवा की, नम्र होकर जैसे जैसे आदेश हुआ वैसे वैसे किया, और फिर तब जाकर जैसे इन्होंने बताया कि ज्ञान तो मिल जाएगा लेकिन जब तक सेवा नहीं करेंगे तब प्रेम नहीं प्राप्त होगा। तो इस्कॉन के शिक्षाओं और इक्षॉन के भक्तों की सेवा करते हुए एक आदर्श गृहस्थ का जीवन जीते हुए इन्होंने, इनकी कथा से एक और बहुत प्रमुख जो मैं बात प्रस्तुत करना चाहूँगा कि कई इस्कॉन के भक्तों के अंदर यह भ्रम होता है कि भागवत पढ़ना हो, प्रभुपाद बुक्स पढ़ना हो तो ब्रह्मचारी सन्यासी होंगे तभी टाइम मिलेगा तब पढ़ सकते हैं, ऐसा कई लोगों को लगता है। और लोगों को लगता है हम तो ग्रस्त हैं हम कैसे पढ़ सकते हैं, हाँ थोड़ा बहुत सुन लें तो फिर हो सकता है, लेकिन पढ़ना अपने बस की बात नहीं। प्रभु जी गृहस्थ हैं, इनकी बेटी की शादी भी हो चुकी है, सब गृहस्थ के उत्तरदायित्व अच्छी तरह निभाते हुए भागवत में डीप पढ़ाई कर सकते हैं और कथा भी कर सकते हैं, ये उदाहरण ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज जो इस्कॉन 99.9% इस्कॉन में गृहस्थ हैं, और 99.9% गृहस्थ इस्कॉन के सोचने लगे कि भाई अरे हम तो गृहस्थ हैं, पढ़ना वढ़ना तो अपने लिए पॉसिबल नहीं है, ये तो थोड़े बहुत ब्रह्मचारी जो मंदिर में बैठे रहते वही पढ़ेंगे, बाकी उनसे जो सुन लिया तो फिर इस्कॉन के प्रभुपाद के बुक्स का क्या होगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है उदाहरण कि भाई गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वही सारी बातें कर सकते हैं जो किसी अन्य आश्रम में संभव है, भजन हर प्रकार से संभव है। तो मैं इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज और सभी भक्तों की ओर से आपका स्वागत करते हुए गौरांग दर्शन प्रभु से निवेदन करता हूं कि इन्होंने कई स्टडी गाइड्स भागवत सुबोधनी करके लिख दिए, हम लोगों की ओर से एक भेंट स्वरूप आपको हम प्रस्तुत करना चाहेंगे हमारी ओर से। और मैं आदिकेश्वर प्रभु से निवेदन करता हूं कि वो सामने आए और गोवर्धन इको विलेज की कम्युनिटी की ओर से श्री श्री राधा मदन मोहन देव के जो वस्त्र हैं वो कुंडल कृष्ण प्रभु को सम्मान स्वरूप प्रस्तुत करें। आदिकेश्वर प्रभु बहुत सीनियर वैष्णव, लगभग 30 वर्ष से इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कुंडल कृष्ण प्रभु। और ये हमारे आराध्य विग्रह, आइए आइए आदिकेश्वर प्रभु। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बस ये केवल संकेत था कि आप आते रहें और कथा करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद कुंडल कृष्ण प्रभु। अब मैं कृष्णाम प्रभु से निवेदन करता हूं कि जो अभी अगले 3-4 दिन के जो कथा का आयोजन कर रहे हैं उन आयोजकों को थोड़ा यहाँ निमंत्रित करें, उनका भी हम सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आज दोपहर को चला जाऊंगा तो फिर मेरे पास समय नहीं रहेगा, वो नहीं आए। ऑर्गेनाइजर्स नहीं है तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फैमिली उन्नति पारिक माता जी और उनके परिवार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कुंडल कृष्ण प्रभु को यहाँ पर निमंत्रित किया। तो पारिक परिवार की ओर से यहाँ प्रतिदिन की कथा जो कि आज शाम से है यहाँ पर ललिता भवन में इसका लाइव रिले किया जा रहा है। ललिता भवन में स्क्रीन लगाकर श्री गौरचरण प्रभु पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और वहाँ पर हर रोज आपके जीईवी का जो व्हाट्सएप ग्रुप में कथा के टाइमिंग्स डिटेल होंगे और वहाँ पर हर रोज जो है आज शाम से लेकर 24 तारीख के शाम तक सुबह शाम जो भी कथा होगी उसका लाइव ट्रांसमिशन होगा और हर रोज का जो प्रसाद है वो भी गोवर्धन अन्न क्षेत्र की ओर से जो पारिक परिवार है उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो गोवर्धन अन्न क्षेत्र और इस्कॉन जीवी की ओर से हम पारिक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने 3 दिन का 4 दिन का प्रसादम पूरी तरह स्पॉन्सर किया और क्योंकि वो नहीं है तो उनकी ओर से मैं आपको ही उनका भी मैं गिफ्ट दे देता हूँ क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत ओर से देना चाहता था और बाकी तो वहाँ पर हॉल में कृष्णाम प्रभु उनको देंगे ही। तो पारिक परिवार के लिए सब लोग बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा। और हम कृष्णाम प्रभु के भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने पूरा ये कोऑर्डिनेशन किया कंप्लीट प्रोग्राम का कई महीनों से चल रहा था और विकास प्रभु और पूरा जो ओपीटी टीम इसकी व्यवस्था कर रहा है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन हरे कृष्णा।